सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। सुनाई दे रहा है पीछे तक? दूसरा अध्याय गीता का चल रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता की जो नींव है उसे डाल रहे हैं, भगवद गीता की जो बुनियाद है उसे आरोपित भगवान कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते श्री भगवान वाच हमने सुना, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनादिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमथ परम। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसा एक भी समय नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं उपस्थित थे, मैं और ये सारे जितने तुम्हारे सगे संबंधी, जितने यहां पर राजा सैनिक इकट्ठे हुए हैं, हम सब एक साथ उपस्थित थे, हैं और रहेंगे। तो इसे क्या समझा हमने, हमारी पिछली सिटिंग में हमने इसे क्या समझा कि भगवद गीता भगवान द्वारा बोली गई। मुख्य वो श्लोक बोलने का प्रयोजन भगवान का यह था कि भगवान ये सिद्ध कर रहे थे कि ये जो तीनों पार्टियां हैं, तीन पार्टियों के बारे में कहा पिछले श्लोक, कौन तीन पार्टियां? अर्जुन, स्वयं भगवान और अन्य राजा। तो तीनों पार्टियों के विषय में कहने के पश्चात भगवान ने जब यह कह दिया कि मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें याद नहीं है अर्जुन, परंतु मुझे सब कुछ याद है कि तुम किन किन योनियों से गुजरते हुए क्या क्या तुम थे, ये सारे जितने इकट्ठे हुए हैं ये किन किन योनियों से गुजरे हैं और ये अब क्या क्या हैं, और तुम दोनों आगे चलकर किन किन योनियों से गुजरोगे और क्या होगे, ये सब मैं जानता हूं। तो अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए होंगे ना कि भाई मैं तो आपको जानता हूं देवकी नंदन, यशोदा नंदन जो कि वृंदावन में बांसुरी बजाया करते थे, गायों को चराया करते थे, माखन चोरी, और आप तो मेरे संबंधी भी हो। कैसे संबंधित है अर्जुन और कृष्ण? कृष्ण के बुआ के लड़के। तो अर्जुन भगवान को इसी प्रकार, इसी दृष्टिकोण से अर्जुन देख रहे थे, और भगवान समझ गए कि ये अर्जुन का जो दृष्टिकोण है कि जैसे भीष्म पितामह अर्जुन से संबंधित हैं, उसी प्रकार से अर्जुन ये सोच रहे थे कि कृष्ण भी मेरे संबंध में है, जैसे भीष्म पितामह, जैसे कि दुर्योधन, दुशासन इत्यादि, वैसे कृष्ण भी मेरे एक संबंधी। तो भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अर्जुन तुमने अपने सगे संबंधियों के विषय में तो विलाप कर लिया, उन्हें तो तुमने कह दिया कि ये मेरे सगे संबंधी हैं, स्वजन, मातुलान, स्वशुरान, भ्रात्रान, पितृन, पौत्रान, कितने सारे अलग अलग प्रकार के सगे संबंधी खड़े थे। परंतु भगवान अब गीता सुनाना शुरू किए हैं तो ये बताना चाहते हैं कि मुझे उस कैटेगरी में मत डालना कि मैं भी एक तुम्हारा सगा संबंधी खड़ा हूं, नहीं, क्योंकि यदि मुझे तुम उस श्रेणी में डालोगे तो तुम गीता कभी सुन नहीं पाओगे। होता है ना, आप इस्कॉन में भी कई बार देखे होंगे कि कई विद्यार्थी जब मंदिर में आना शुरू करते हैं, जप करना शुरू करते हैं, लेक्चर वेक्चर सुन लेते हैं, बुक पढ़ लेते हैं, तो घर जाकर फिर अपने माँ बाप को सुनाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, अरे तू बिस्तर में पेशाब करता था मेरे सामने, तू अंगूठा चूसता था मेरे सामने, और मुझे बता रहा है, बोलते ना ऐसे, मुझे सिखा रहा है। वो कई बार थोड़ा डायलॉग मारते हैं कि जिस स्कूल में तुम फुदक रहा है ना, उसका मैं प्रिंसिपल रह चुका हूं, तू मेरे को गीता सिखाएगा? तो यहां पर भी अर्जुन का वो भ्रम दूर कर दिया भगवान वो एक श्लोक से। तो तुरंत अर्जुन का सर चिंजन चालू हो गया कि ये सब कुछ याद कैसे है इनको, ये कैसे बोल सकते हैं कि ये जानते थे, जानते होंगे आगे चलकर भी सब कुछ। तो तुरंत फिर भगवान ने, श्री भगवान अपने उस पद को स्थित कर दिया। तो आज का श्लोक ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, अक्सर भगवद गीता का एक श्लोक बहुत लोगों को कंठस्थ हो जाता है, क्योंकि यदि और कोई श्लोक इतना ज्यादा आता ना हो तो कोई बाहर वाला भी पूछ ले हरे कृष्णा भक्तों से कि बताओ बताओ कौन सा गीता का श्लोक, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम, क्योंकि लेक्चर में इतनी बार सुन लिया तो सुन सुन के याद हो जाता है। मीनिंग पूछो आना मंदिर में आना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि ये श्रील प्रभुपाद अक्सर ये श्लोक कहा करते थे अपने प्रवचनों में। तो क्यों ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, आज हम यदि इसको विच्छेदित कर या अंग्रेजी में जिसे कहें डाइसेक्ट कर देखें आज, तो पता लगेगा कि कितना गुह्य ज्ञान है इस एक श्लोक के अंदर, जो कि हमारे आचार्यों ने कूट कूट कर भूरी भूरी मात्रा में इसमें भर रखा है। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, एक है देह और एक है देही, क्या अंतर है देह और देही, कौन कह सकते हैं? देह, देह देने वाला नहीं, देह धारण करने वाला, देह को धारण करने वाला देही कौन है वो? हाँ? आत्मा है ना, कुछ कोई शंका है? वो दूर हो जाएगी आज अगर शंका है। अब देखिए यहां पर भगवान इस श्लोक में सीधा ये नहीं कह रहे आत्मा, इसलिए देखिए आप लोग थोड़ा उत्तर देने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं, आत्मा ही है कि और कोई है? मेरे देह को बहुत लोग धारण किए हैं। अब देखिए हमारे शरीर में बहुत से कीटाणु भी अंदर हैं, हमारे आत्मा के साथ बहुत से कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी स्वाइन फ्लू का या बर्ड फ्लू का या जो भी, वो भी हमारे शरीर के देह के अंदर हैं, परंतु उन्हें देही नहीं कहा जाएगा। जो मुख्य ओनर, ओनर जिसे बोलते हैं, जैसे आपके घरों में कॉकरोच, चींटियां, चूहे, छिपकली, वो भी कह सकते हैं कि हम भी रहते हैं भाई। अभी बंबई में कोई बिरला का बड़ा बंगला है मलाबार हिल, तो बिरला के बंगले में, उनके बंगले में कोई कॉकरोच भी है वो भी बोलेगा मैं भी बिरला के बंगले में रहता हूं। यदि बंबई के कॉकरोचों का एड्रेस पूछा जाए तो बोले साउथ बॉम्बे में रहता हूं, बिरला के बंगले में रहता हूं। तो क्या वो बंगला उसका हो गया? नहीं, वो उसे देही नहीं कहा जाएगा। तो यहां पर भगवान आत्मा शब्द नहीं कह रहे, अब तक आगे कहेंगे, अब तक नहीं कह रहे, क्योंकि अब तक अर्जुन देह देहात्म बुद्धि में है, इसलिए देहात्म बुद्धि की ही भाषा भगवान ने इस्तेमाल की, देहिनो अस्मिन, कि इस देह के अंदर, यथा देह, देह के अंदर, अस्मिन देही, इस देह के अंदर है, अस्मिन का अर्थ है अंदर, इस देह के अंदर है देही, पहले ये समझो। और फिर भगवान आगे कहते हैं कौमारम यौवनम जरा, कि मान लो अर्जुन पूछे तो फिर यदि मैं वही व्यक्ति हूं तो मैं बचपन में जो था और अब जो मैं हूं, मेरा देह तो परिवर्तित हो चुका है, तो भगवान कहते हैं कि ये जितनी भी अवस्थाएं तुम्हारी हैं, बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था, तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था, इन सभी अवस्थाओं में वो जो देही है वो नित्य रहता है बिना बदलाव के। शरीर का परिवर्तन परंतु वो देही का परिवर्तन नहीं। तथा और उसके बाद भगवान आगे कह दिए कि इतना ही नहीं अर्जुन, देहांतर प्राप्ति, कि इस देह को छोड़ने के पश्चात तुम फिर भी नहीं बदलोगे, तुम्हारा जो आत्मा है वो फिर भी नहीं बदलने वाला, दूसरा तुम्हें शरीर मिलेगा, आत्मा वही रहेगा। तो ये बहुत आवश्यक है समझना। भगवान कहते हैं कि यदि कोई धीर व्यक्ति है वही मोहित नहीं होता, धीरस तत्र न मोहयति, यदि कोई धीर व्यक्ति नहीं है तो वो तुरंत इस बदलाव से मोहित हो जाता है, और हम देखेंगे कैसे मोहित हो जाता है। तो ये इसका अनुवाद है कि धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता, किससे? ये सारे जो बदलाव देखता है वो अपने जीवन में, बाल्य अवस्था से युवा, युवा से वृद्ध अवस्था, उसके पश्चात मृत्यु, मृत्यु के पश्चात दूसरा देह, बिल्कुल मोहित वो नहीं होता। तो श्लोक के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आज जिनकी हम चर्चा करेंगे, भगवान द्वारा सिद्धांत का पुष्टिकरण हो रहा है, देही के देह की अवस्थाएं, अन्य देह की प्राप्ति, उसमें मोह के प्रकार, और अंततः भगवान कहते हैं कि धीर पुरुष का क्या गुण है। तो सर्वप्रथम सिद्धांत का पुष्टिकरण। अच्छा, सिद्धांत भगवान ने कौन सा स्थापित किया पिछले श्लोक से? कौन सा सिद्धांत स्थापित किया भगवान ने? हाँ हाँ ठीक है, भगवान सर्वज्ञ हैं, उसके अलावा एक और सिद्धांत भगवान स्थापित किए, आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता। भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा कि तुम बदल चुके हो, ये राजा सारे बदल चुके हैं, मैं बदला नहीं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे तरह शरीरधारी नहीं हूं। भगवान ने यह सिद्धांत स्थापित किया है, हालांकि भगवान ने डायरेक्टली नहीं कहा अर्जुन को, पिछले श्लोक में डायरेक्टली नहीं कहा कि अर्जुन तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, परंतु सिद्धांत स्थापित कर दिया, अर्जुन के अंदर एक प्रश्न उत्पन्न कर दिया भगवान ने, देह और आत्मा का विभाजन क्या है। तो अब उस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए भगवान एक उदाहरण दे रहे। तो इसलिए भगवान की बोलने की शैली देखिए, भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति की बाल्यावस्था से युवा और तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था, एक उदाहरण दे रहे हैं। तो हमें यह समझना है कि भगवद गीता और जो भी हमारे ग्रंथ हैं उसमें भगवान और भगवान के प्रतिनिधि जो भी सिद्धांत स्थापित करते हैं वो उदाहरण के द्वारा उस सिद्धांत को हमें समझाते हैं। क्योंकि भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, इन पुराणों में आप देखोगे कि उदाहरण बहुत है। भागवत में कितने उदाहरण हैं, उदाहरणों से भागवत भरा हुआ है। एक सिद्धांत को आप लीजिए, उसके पीछे कितने सारे उदाहरण, कितनी कथाएं, ये सारी जो कथाएं भागवत में हैं वो सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए। जैसे कि अजामिल की जो कथा है, अब अजामिल की कथा श्रीमद् भागवत के कौन से स्कंद में, 13वें 14वें 15वें, कौन से स्कंद में, 6ठे स्कंद में, 12 स्कंद केवल भागवत में। तो 6ठे स्कंद में अजामिल इस व्यक्ति से परिचित है ना, अजामिल, तो अजामिल का उदाहरण स्थापित किया सुखदेव गोस्वामी ने कौन से सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए। नाम की महिमा, हरिनाम की महिमा के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए अजामिल की पूरी कथा, उदाहरण अजामिल का। हिरण्यकशिपु का वध भगवान श्री नरसिंह देव की कृपा, ये पूरे 7वें स्कंद में इतना बड़ा जो प्रसंग है, प्रहलाद महाराज उनका जो उदाहरण सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं कौन से सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, कि भगवान वो सब के लिए सम है परंतु अपने भक्तों के लिए विशेष प्रेम करते हैं। ही इज ऑल्दो इम्पार्शियल टुवर्ड्स एवरीवन बट व्हेन इट कम्स टू हिज डिवोटीज ही इज वेरी स्पेशली फेवर्ड। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए पूरे नरसिंह भगवान की लीला आप लोग देख रहे होंगे, प्रयोगशाला क्या ये लिखा हुआ है, तब से सब लोग देख रहे हैं उस तरफ। तो जैसे कि साइंस में, विज्ञान में आप देखो, एक है थियरी, उस थियरी को सिद्ध करने के लिए एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, और फिर एक्सपेरिमेंट, फिर प्रैक्टिकल्स, सुना होगा ना, बच्चे भी बोलते प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, आप लोग भी प्रैक्टिकल्स वगैरह स्कूल कॉलेज में किए होंगे। तो प्रयोगशाला, तो अब यहां पर भगवान सिद्धांत क्या है कि हम आत्मा है शरीर नहीं, उसे उदाहरण के द्वारा, और हम कैसे प्रयोगशाला में इसका प्रयोग कर सके ये पहले समझेंगे, नहीं तो वो श्लोक याद करके रट्टा मारकर उसका जो अनुवाद है वो किसी को सुनाकर, वो ठीक है, अच्छी बात है, परंतु जब तक उसे हम अपने जीवन में प्रयोग में नहीं लाएंगे तब तक उसका वास्तविक अर्थ, हम उसका साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं, हम दोनों लेंगे, उदाहरण और फिर प्रयोगशाला। तो उदाहरण कभी भी स्थापित होता है, इसके दो कारण होते हैं, उदाहरण से हमें प्रोत्साहन मिलता है और वो व्यवहारिक है, अर्थात उस सिद्धांत को हम अपने व्यावहारिक जीवन में अपना सकते हैं, इसका आश्वासन मिलता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया अजामिल का, तो अब मैं पूछना चाहूंगा, आप समझ गए प्रोत्साहन और व्यावहारिकता, ये दोनों मुद्दे समझ गए? इंग्लिश में मैं कहता हूं, वी गेट इंस्पायर्ड बाय रीडिंग समवन्स एग्जाम्पल एंड वी अंडरस्टैंड दैट इट इज प्रैक्टिकल, दैट फिलोसॉफिकल पॉइंट इज नॉट समथिंग एब्स्ट्रैक्ट दैट आई कांट रीच। बिटवीन वी एंड द फिलोसॉफिकल पॉइंट देर इज एन एग्जाम्पल गिवन बाय द स्क्रिप्चर्स। तो अब अजामिल का उदाहरण से आप कैसे समझोगे? मान लो आपने भागवत में अजामिल की कथा पढ़ी, तो इस उदाहरण से आप ये दोनों चीजें, प्रोत्साहित और व्यावहारिकता, आपके जीवन में कैसे आप उसे समझे? अजामिल का उदाहरण कौन कौन जानते हैं, हाथ ऊपर कीजिए पहले, तो मैं ऐसे अंधेरे में गोली मार रहा हूं। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो अजामिल का उदाहरण आप लोग जानते हैं। अजामिल की कथा संक्षिप्त रूप में दो लाइन में बताना चाहूंगा। अजामिल एक शुद्ध ब्राह्मण था, एक वैश्या के संग में पतित हुआ, पाप किया, मरते समय अपने पुत्र का नाम, जिसको नारायण उसने रखा था, नारायण का नाम उसने उच्चारण किया, यमदूत आए थे उसे ले जाने के लिए, यमदूत को रोका विष्णुदूत ने क्योंकि नारायण का नाम उसने उच्चारण किया, अजामिल यमलोक जाने से बच गया। तब इसमें आप क्या सीखे? मान लीजिए आप परीक्षित महाराज की जगह पर सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं, सिर्फ एक बार भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, धुल जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये इसे कहते हैं प्रोत्साहन। कि अजामिल का उदाहरण जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है कि नहीं? यदि अजामिल का उदाहरण पढ़ने के बाद भगवान का नाम नहीं निकल रहा तो सिद्धांत पल्ले नहीं पड़ा, वो सिद्धांत उतरा नहीं अंदर। आपको समझ में आया? प्रोत्साहित हमें वो उदाहरण करना चाहिए, किस लिए? उस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने के लिए। तो अजामिल की कथा है वो हम सब के जीवन में ये सिद्धांत को उतार, केवल एक ही सिद्धांत को उतार रही, भगवान का शुद्ध नाम, उसकी महिमा। और व्यावहारिक प्रैक्टिकल, क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या व्यावहारिक मुद्दा क्या आप सीखे उसमें? यदि एक बार भगवान का नाम लेने से सारे पाप धुल सकते हैं तो फिर एक बार ही लेंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे थे। हाँ, वो अच्छी बात है, वो भी बहुत अच्छी बात है। हाँ तो बच्चे का नाम नारायण रखना चाहिए। हाँ सही बात है। नहीं नहीं, ये भी ये पॉइंट भी श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में कहते हैं कि अजामिल से व्यावहारिकता क्या सीख रहे हैं हम, कि बच्चों का नाम भगवान का नाम रखना चाहिए, ये नहीं चिंटी पिंकी पप्पू बबलू। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अजामिल का है. आजकल हमें अपने आप को शुद्ध करने के लिए और कुछ वेरी इजी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट. हाँ ये प्रैक्टिकल है क्योंकि कलयुग में सभी सब कुछ इजी और देखते हैं फ्री किधर लिखा हो. फ्री डिस्काउंट फ्री सेल ये सब. तो अजामिल का उदाहरण बहुत व्यावहारिक इसलिए है कि कलयुग में हमारी जो स्थिति है और अजामिल की जो स्थिति उसने कर ली थी सत्युग में वो एक बराबर है. देखिए सत्युग में एक अजामिल था करोड़ों लाखों अरबों में और कलयुग में कोई एक शुद्ध भक्त होता है अरबों करोड़ों में अजामिलों में, है ना. तो इसलिए कलयुग में जो आए दिन अजामिल पैदा हो रहे हैं उनके लिए अजामिल की कथा बहुत व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है कि जिसने इतने पाप किए वो व्यक्ति पूरे पापों से मुक्त हो सकता है, यमदूतों से बच सकता है. तो ये बहुत व्यवहारिक है कलयुग के पापियों के लिए, वेरी प्रैक्टिकल. यदि अजामिल का पहले का उदाहरण दिया होता जो अजामिल के जो गुण थे ब्राह्मण के गुण, उन ब्राह्मणों के गुणों को आज के कलयुग के व्यक्ति यदि पढ़ते तो हमारे लिए है ही नहीं, बंद कर देते भागवत कि ये इतना ऊंचा जो स्टैंडर्ड है एक भक्त का या ब्राह्मण होने का वो तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते. उस प्रकार अजामिल उस तर्क के उसमें था. उसकी हम चर्चा इतनी नहीं करते. हम चर्चा कौन सी करते अजामिल ने कौन कौन से पाप किए, है ना. फिर हम भागवत खोल के अपना बायोग्राफी खोलते हैं, है ना. भागवत बंद करके हम अपना बायोग्राफी खोलते हैं. मैंने भी इतना ही किया है अजामिल ने, ये मैंने भी अजामिल ने, मैंने भी अजामिल ने, मैंने भी अजामिल ने हरिनाम लिया मैं भी ले सकता हूं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम. इसे कहते हैं प्रैक्टिकल. इसलिए जो सुखदेव गोस्वामी जैसे महाजन, इन्होंने ये जो ग्रंथ कहे सुनाए, भगवान ने जो ग्रंथ दिए, ये ऑल टाइम टू कम, सभी स्थितियों समय काल के लिए व्यवहारिक ये सारे उदाहरण. तो इसलिए यहां पर भगवान जो उदाहरण दे रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो बाल्य अवस्था से युवा अवस्था और फिर वृद्धावस्था. तो प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि नहीं, हमारे ही जीवन में हम देख रहे हैं. तो इसलिए भगवान ने किसका उदाहरण दिया, आध्यात्मिक संसार का कोई उदाहरण नहीं दिया. जो हो रहा है इस भौतिक संसार में जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसका उदाहरण दे रहे हैं. इसलिए ये प्रोत्साहन देने वाला है और हमें यह समझाने वाला है कि यह व्यवहारिक है, ये सिद्धांत व्यवहारिक है. अक्सर लोग भगवद गीता खोलते हैं कुछ पढ़ते हैं और फिर कहते हैं इट्स नॉट प्रैक्टिकल, आजकल की दुनिया में इसे लागू नहीं कर सकते. नहीं, कौन सी ऐसी बात है भागवत भगवद गीता में जो हम लागू नहीं कर सकते या नहीं देख रहे जो भगवान ने कहा है. ऐसी एक भी बात नहीं भगवद गीता के अंदर, ऐसा एक भी सिद्धांत नहीं भगवद गीता के अंदर जो आजकल के कलयुग में 21वीं सदी में व्यवहारिक ना हो. हालांकि भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व और उससे भी पहले विवस्वान को कितने करोड़ों अरबों युगों पहले सालों पहले सुनाई, आज भी वो व्यवहारिक है. ये आज का श्लोक लीजिए जो भगवान कह रहे हैं, बस ये तीन चीजें, बाल्य अवस्था से तरुण, तरुण से वृद्ध, उसके पश्चात फिर देह का अंतर, व्यवहारिक. समझ में आया. इससे ये हमें समझना है कि अब हम कभी भी भगवद गीता पढ़ें या भागवत पढ़ें, कोई भी प्रसंग पढ़ें, तो उसका सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए ये नहीं कि बहुत अच्छी कथा थी बस, सिद्धांत क्या उतारा जीवन में, सिद्धांत भी था क्या? सबसे पहले तो लोगों को ये सिद्धांत वर्ड भी, ये कौन सी भाषा है, फिलोसॉफी, फिलोसॉफिकल पॉइंट जो है। इसलिए जो व्यासदेव जी ने जब देखे उपनिषद, वेदांत सूत्र, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसमें कोई उदाहरण उदाहरण नहीं, खाली फिलोसॉफी, सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत। तो आपके पास बुद्धि होनी चाहिए कि उस सूत्र को, वेदांत सूत्र को, उस सिद्धांत को समझकर अपने जीवन में व्यावहारिक रूप में उतारना। तो यदि केवल वो, कई बार लोग आकर पूछते हैं आपके पास वो है ओरिजिनल वेदा, ऋग्वेदा, सामवेदा, ये सब वेद हैं, उनको हम पूछे कितने बताओ कितने वेद, वो भी मालूम नहीं उनको, नहीं नहीं वो है ना कुछ तो वेद, ओरिजिनल वेद, अरे उसका एक भी सूत्र पल्ले भी नहीं पड़ेगा हमारे कि उसके उसके पीछे सिद्धांत क्या सिखा है। इसलिए भागवत और ये सब व्यासदेव जी ने हमारे लिए ला कर दिया उदाहरणों के साथ, कथाओं के साथ, प्रसंगों के साथ। पूरा जो महाभारत, पूरे महाभारत में व्यासदेव जी ने जो अलग अलग प्रकार, जिसमें हमको इतनी रुचि होती, किस में रुचि होती है, षड्यंत्रों में, पता है उसके साथ क्या हुआ, षड्यंत्रों में कितनी रुचि होती है, तो पढ़ो शकुनी, शकुनी के षड्यंत्र, पता शकुनी ने क्या किया। इसलिए महाभारत फेमस क्यों हुआ पूरे भारत में, वो भगवत गीता की वजह से नहीं, भगवत गीता के समय तो बहुत लोग सोते थे, लेकिन उससे पहले जो शकुनी क्या करने वाला है, अब क्या नया पासा, कौन सा नया पासा फेंकेगा वो, अब पांडव कहां पर है, अब वो अज्ञातवास में, अब कौन पहचानेगा उनको, ये सब पूरा एक्साइटिंग बनाया महाभारत को व्यासदेव जी ने। इसलिए क्योंकि कलयुग में हम सबको इसमें ज्यादा रुचि, तो व्यासदेव जी बहुत बुद्धिमान, ये सब कुछ देख के, यहां पर इसकी साजिश चल रही है, उसका षड्यंत्र, कोई इसको मार दिया, कोई उसके साथ रोमांस कर रहा है, उसका पता उसके साथ ये चल रहा है, अर्जुन ने उसको अपहरण कर ले गया, ये सब महाभारत में सब कथाएं, वो अप्सरा पता उसके साथ क्या हुआ, उर्वशी के साथ क्या हुआ। तो ये सब कुछ सुनाते सुनाते फिर भगवद गीता, अच्छा भगवद गीता, फिर बीच में भगवद गीता आती है, तो उसमें से इतने लोग, उनके अंदर व्यासदेव जी सुकृति डाल रहे हैं कि हाँ कृष्ण से संबंधित जो भी कुछ है वो आपको शुद्ध करेगा, या चाहे षड्यंत्र हो, चाहे कोई साजिश हो, चाहे प्रजल्प हो, कुछ भी हो, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित वो शुद्ध कर देगा। अब प्रयोगशाला, तो हमने सिद्धांत और सिद्धांत का उदाहरण अब अपने जीवन में उतारना है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण हमने पढ़ लिया, उसे समझ लिया, उससे प्रोत्साहित हो गए, उसकी व्यावहारिकता देख ली, अब प्रयोगशाला, एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी। प्रयोगशाला क्या होता है, लेबोरेटरी में उतरना है, लेबोरेटरी में वो आपको थियरी बंद करना पड़ता है, अभी सीधा प्रैक्टिकल शुरू करो। तो बताया गया है कि प्रयोगशाला में स्वच्छता होनी चाहिए, जो भी एक्सपेरिमेंट आप करने वाले हैं, स्वच्छता होनी चाहिए और प्रकाश होना चाहिए। तो हमारे जीवन में यदि इन सिद्धांतों को हमें प्रयोग में लाना है, तो सत्वगुण हमारे जीवन में, जैसे प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करने से पहले प्रयोगशाला स्वच्छ होनी चाहिए और प्रकाशमान होनी चाहिए, उसी प्रकार से हमारे जीवन में सत्वगुण आना चाहिए। तो सत्वगुण करता क्या है कि हमारे जीवन की अशुद्धता को दूर करता है, स्वच्छ बनाता है और हमारे जीवन को प्रकाशमान बनाता है. इट मेक्स अवर लाइफ क्लीन एंड एनलाइटेंड. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये जो चार नियम दिए, देखिए, मांसाहार नहीं करना, पर स्त्री पुरुष गमन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, ये हमें सत्व गुण में लाता है. सत्व गुण में स्थित होने के पश्चात फिर एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हैं हम, तब जाकर उसका रिजल्ट असरदार होगा, इफेक्टिव होगा. वही चैंटिंग कोई यदि तमोगुण रजोगुण में करेगा तो वो किस प्रकार से, जैसे वो प्रयोगशाला में सब प्रकार की गंदगी है और अंधकार है तो उसे दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सा केमिकल किसमें डाल रहा है वो. कोई अगर कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसको दिखाई नहीं दे रहा और सब जगह इतना सब कुछ अशुद्ध है. तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम भगवद गीता के इस सिद्धांत को अपने जीवन में प्रयोग में लाने की कोशिश करना चाहते हैं तो यह देखना आवश्यक है कि सत्व गुण में स्थित हैं कि नहीं. समझ में आया? अब देह परिवर्तन के विषय में यहां पर भगवान बता रहे हैं. भगवान ने क्या कहा देह परिवर्तन के विषय में श्लोक में? अब तक इस श्लोक से हम क्या समझे देह परिवर्तन के विषय में? भगवान ने क्या कहा है? नहीं, देह बदलेगा कैसे? बदलेगा तीन तीन अवस्था बताई कि चार अवस्था बताई? चार अवस्था. बाल्य अवस्था नहीं, नहीं, कुमार अवस्था बाल्य अवस्था ही हो गई, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था और उसके बाद फिर दीवार के उस पार, है ना, मतलब दूसरा शरीर. ठीक है, क्या देह परिवर्तन केवल उतना ही है कि उससे ज्यादा कुछ है देह परिवर्तन? हम हमारे जीवन में जो भगवान बताएं उतना ही अनुभव करते हैं देह का परिवर्तन? एक है स्थूल देह और एक है सूक्ष्म देह. स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर. स्थूल शरीर कौन सा है? ये जो हमें दिखता है, हाड़ मांस का जो बना हुआ, हाँ, फिजिकल. और सूक्ष्म है मेटाफिजिकल. सूक्ष्म है मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है. तो अब यदि ये पूछा जाए कि कौन सा देह परिवर्तित होता है, स्थूल शरीर या केवल स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर? दोनों शरीर है, दोनों देह है, बोथ आर मटेरियल. क्या परिवर्तित होता है? सूक्ष्म. स्थूल नहीं तो भगवान किसके बारे में बोल रहे हैं सब? भगवान स्थूल शरीर के बारे में बोल रहे हैं. तो अर्थात सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन नहीं होता? होता है कि नहीं होता है? वही तो मैं पूछ रहा हूं कि सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन. आप लोग सब बचपन में जो आप आपका मन था जो भी हुआ विकसित हुआ है ना, है ना, परिवर्तन हुआ है कि नहीं? बचपन में हम क्या क्या करते थे, सूक्ष्म शरीर क्या हम सोच विचार किया करते थे, क्या इच्छाएं हमारी हुआ करती थी. दोनों में परिवर्तन होता है, दोनों में, स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर दोनों में परिवर्तन होता है. इसमें सत्व गुण. तो प्रयोगशाला में जो हमने चर्चा की कि स्वच्छता और प्रकाश, सत्व गुण जिसे जिसकी तुलना हमने दी, तो परिवर्तन होना चाहिए यदि हमें सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना है सही सही तरीके से, तो सत्वगुण केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, स्थूल स्तर पर सत्वगुण नहीं, सूक्ष्म स्तर पर भी सत्वगुण आना चाहिए। आप देखो बहुत से लोग स्थूल स्तर पर बहुत शुद्ध रहते हैं, स्थूल स्तर पर बहुत। पाश्चात्य देश में आप देखो वहां पर सब जगह साफ सुथरा, कहीं पे कोई गंदगी नहीं, जिधर भी आप जाओ साफ सुथरा रहेगा सब। जैसे कि अमेरिका में लास वेगस नाम का शहर है, जानते हैं लास वेगस, पता है क्या होता है वहां पे? जैसे भारत में हम कुंभ में जाते हैं ना स्नान करने, कुंभ मेले में जाते स्नान करने, क्यों जाते हैं? ज्यादातर लोग जाते हैं पाप धोने के लिए ना, संगम में डुबकी लगाएंगे। तो लास वेगस वहां जाते हैं पाप के संगम में डुबकी लगाने के लिए, वो है लास वेगस। वहां पे हर प्रकार का पाप जिसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ऐसे सारे पाप वहां पे होते हैं। तो वहां पर आप देखो बहुत साफ सुथरा सब कुछ रहता है, जुआ घर कसिनो बहुत साफ सुथरा रहेगा, कहीं पर गंदगी नहीं, एकदम प्रकाशमान वो कसिनो, सब साफ सुथरे कपड़े पहने हुए बैठे हैं, सब कुछ, कहीं धूल नहीं कहीं पर, सब साफ सुथरा। क्या वो सत्वगुण है? स्थूल स्तर पर सब कुछ साफ सुथरा है, अंदर क्या चल रहा है? ग्रीड, चीटिंग। तो यहां पर जब देह का परिवर्तन कहा गया है, सिद्धांत को समझने के लिए हमारे स्थूल और सूक्ष्म दोनों देहों को सत्वगुण में लाना होगा। तो केवल चार नियम, जो चार नियम हमने बताए, प्रभुपाद ने जो चार नियम बताए हैं, वो चार नियम से क्या होता है? स्थूल स्तर पर हम सत्वगुण में आते हैं। बहुत से नास्तिक चार नियम पालन करते हैं, ये मत सोचिए कि ये चार नियम केवल हम हरे कृष्णा वाले ही पालन करते हैं, बहुत से नास्तिक भी पालन करते हैं चार नियम का, परंतु सूक्ष्म स्तर पर जब तक हम भगवान के संबंध में स्थापित नहीं होते तब तक वो चार नियम हमें ठीक से हमारी प्रयोगशाला में वो सिद्धांत को नहीं समझेंगे। तो जो जप है, कीर्तन है, श्रवण है, वो सब हमें सूक्ष्म स्तर से सत्वगुण में लाकर शुद्ध सत्व में स्थित करते, हमें केवल इसमें तसल्ली नहीं ले लेनी चाहिए कि मैं कांदा लहसुन छोड़ दिया, मैं चाय कॉफी छोड़ दिया, मैं टीवी भी नहीं देखता, जुआ तो मैं कभी खेला ही नहीं, आता ही नहीं मुझे खेलना, तो मैं ये चार नियम अब पालन कर रहा हूं तो अब बस हो गया, अब तो कृष्ण प्रेम आ जाना चाहिए। नहीं, जब तक कि हम सूक्ष्म स्तर में सत्वगुण में नहीं आएंगे अंदर से, तब तक वो कनेक्शन, वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। कौन सा सर्किट? सिद्धांत को हमारे जीवन में उतारने का सर्किट। तो सबसे पहले हम स्थूल देह का जो परिवर्तन है, भगवान कहें बाल्यावस्था से तरुण अवस्था, फिर वृद्धावस्था, तो ये हो गया स्थूल स्तर पर। इसका तो ज्यादा हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं, हम सब अनुभव अपने ही शरीर के साथ किए हैं। अब देहांतर के विषय में भगवान कहते हैं देह का अंतर, जैसे ये बहुत फेमस इस्कॉन का पेंटिंग है जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे, आज का जो श्लोक है वो श्लोक इस पेंटिंग के द्वारा बताया गया। बाल्य अवस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था और उसके पश्चात देहांतर प्राप्ति, आगे वो कार्यक्रम चल रहा है। पीछे देखिए, वो मूवी खत्म नहीं हुई, आगे चल रही। परंतु इसमें क्या, इस चित्र में क्या देखा जा रहा है, एक कांस्टेंट चीज क्या है, वो आत्मा। देखिए वो जो लाइट है ना, वो आत्मा दिख रही है आपको, दिख रहा है? हाँ, बनाया गया है वैसे। तो आत्मा वो कॉन्स्टेंटली वो एक ही है, उसमें परिवर्तन नहीं बताया गया। तो हम देखते हैं कि हमारी ये अवस्था होती है, जब फोटो देखते हैं इस उम्र में तो ये भी इन्हीं की फोटो है, फिर इसमें भी यही थे, अब भी यही, इसके पश्चात ये क्या है, एक दरवाजे से, कौन सा दरवाजा है वो, मृत्यु, मृत्यु के दरवाजे से वो जा रहा है और दूसरा दरवाजे से बाहर आया, जादू का खेल ना। देहांतर प्राप्ते। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे अभी, इसमें जरूरत नहीं, नेक्स्ट वाले। इसमें आप बहुत एक दो मिनट का ही है, बस एक मिनट का होगा, उसमें आप ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार हम अपने देह परिवर्तन को हम इतना फास्ट नहीं देख पाते ना, इसलिए हम भूल जाते हैं कि हमारा देह परिवर्तित हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम धीर बन गए, क्योंकि हम देख नहीं पाते कि कैसे हमारा देह परिवर्तित हो रहा है। तो यहां पर आप देखिए, हम सबको अपने आप को रखना है। आप जो देखोगे उसमें देखो, हम सबको अपने आप को, जिस व्यक्ति को हम देखेंगे कि हमारा जीवन स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, हमारा जीवन स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और कैसे हम दिखेंगे, या दिखते थे, दिख रहे हैं, दिखेंगे। अब इतना ही नहीं है, भगवान ने इस श्लोक में क्या कहा है कि यहां पर तो हमने क्या देखा, बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था। अब उसके बाद क्या, इसमें हमने ये देखा कि एक दो मिनट में हमने देख लिया कि कैसे चेहरे बदल रहे हैं ना, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि वो एक ही व्यक्ति के सारे चेहरे बदल रहे हैं ना, अलग अलग एक ही व्यक्ति उसके अलग अलग चेहरे बदल, कभी शेर बन गया, कभी भालू बन गया, कभी गाय बन गया, कभी बकरी, कभी मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स से सीधा बकरी। फिर चूहा, चूहे से मिस्टर यूनिवर्स, फिर मिस्टर यूनिवर्स से वापस कोई जानवर। तो भगवान ये बता रहे हैं कि वो आत्मा, आपको ये छोटा सा जो क्लिपिंग था उसमें क्या समझ में आया कि वो जो आत्मा, वो ये दर्शाया गया है कि आत्मा वही शरीर परिवर्तित हो रहा है। और अभी हमने दो मिनट में देख लिया कितने सारे शरीर परिवर्तित हो गए। तो लगता क्या है, अभी मान लो कि आपको केवल एक फोटो दिखाया जाता कि शेर का, आपको लगता है अरे शेर अभी वो पैदा हुआ, बड़ा होगा, कितना कितने साल जिएगा, ये इतनी जल्दी जल्दी शेर से फिर वो आदमी बन गया, आदमी से फिर भालू बन गया, जो भी बन गया, इतनी जल्दी जल्दी हम नहीं देख सकते लेकिन भगवान देख रहे। तो ये जो वीडियो जो दिखाया है ये भगवान इस श्लोक में और इसके पिछले श्लोक में इस प्रकार का वीडियो हम सबका देख के बोल रहे हैं, है ना, कि अर्जुन तुमको मैंने ये सब कुछ होते हुए देखा है, तुम्हारे जो बदल रहे चेहरे, अभी ये कुछ समय के लिए, खाली दो सेकंड के लिए अभी तुम अर्जुन बन के खड़े हो इधर, और हमारे लिए वो दो सेकंड मतलब पूरा साम्राज्य हम खड़ा कर लेते हैं दो सेकंड के अंदर, कि हाँ अब मेरा बंगला है, मेरे परिवार है, गाड़ियां हैं, ये है वो है, मेरा देश है, ये सब कुछ। लेकिन वो भगवान के दृष्टिकोण से कितना है टाइम के लिए, जितना टाइम के लिए वो देखे ना चेहरा बदलते, कितना टाइम लगा चेहरा बदलने में, वो है। तो इसलिए ये भगवान बता रहे हैं कि ये जो अवस्था है जिसके अंदर हमारा शरीर हर क्षण बदल रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हर क्षण हमारा शरीर बदल रहा है, कहां किस तरफ जा रहा है, मृत्यु की तरफ, मृत्यु की तरफ जा रहा है, हम देख नहीं पा रहे, इसलिए हम सोचते हैं कि बस जो कुछ है यही जीवन, इसी में रचे पचे रहे। अब हमारे स्थूल शरीर को हम इतनी आसानी से नहीं देख सकते बदलते हुए, हो सकता है कि एक पांच छह साल बाद समझ में आए कि हाँ भाई मैं बड़ा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं मोटा हो गया, या जो भी कुछ मेरे शरीर में परिवर्तन आया। परंतु जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इन कारणों की वजह से हम जान पाएंगे कि हमारा सूक्ष्म शरीर भी परिवर्तित हो रहा है, और वो हर क्षण हम जान सकते हैं सूक्ष्म शरीर। अभी एक इच्छा की, तुरंत दूसरे क्षण उसकी विपरीत इच्छा की, हमने परिवर्तित हो गए सूक्ष्म शरीर। एक मिनट पहले लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि कुछ वीडियो दिखाया जा रहा था, है ना, एक मिनट बाद ऐसा फिर से वही बोर शुरू हो गया, है ना, मन ऐसा है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर ऐसा है, एक एक मिनट में परिवर्तित होता रहता, फिर अचानक हमको कुछ याद आता, अरे अरे हाँ अच्छा अच्छा लग रहा, अभी अच्छा लग रहा, पंखे की आवाज अच्छी आ रही। तो हमारी आदतें, हमारी इच्छाएं, हमारी विचारधारा, ये जो सूक्ष्म शरीर हमारा है, ये सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर के साथ साथ परिवर्तित होता है। और कई बार सूक्ष्म शरीर जो है उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, उसके उसका जो परिवर्तनशील क्रिया है वो स्थूल शरीर की तुलना में बहुत फास्ट, इट्स वेरी रैपिड। लोग उसे नहीं देख पा रहे, स्थूल सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे, इसलिए उनका कॉन्शियसनेस केवल स्थूल शरीर के ऊपर है कि ये परिवर्तित कैसे हो रहा है, अभी झुर्रियां आ गई, उस झुर्रियों को कैसे क्या लगाऊं, कैसे दूर करूं, ये वो, ये नहीं समझ रहे कि तुम्हारे मन के अंदर कितनी झुर्रियां पहले से आ चुकी है, मतलब मन कितना बीमार हो रहा है, उसको क्या सुधारने के लिए व्यक्ति कर रहा है। तो यदि हम अब ये उदाहरण लें सूक्ष्म और स्थूल शरीर का, तो बचपन, बचपन में आपको अभी याद है कि आपके सूक्ष्म शरीर की क्या रूपरेखा थी? स्थूल शरीर को तो आप देख सकते हो फोटो में कि हाँ मैं इतना सा था, 2 साल 3 साल 5 साल। सूक्ष्म शरीर कैसा था आपका, फोटो में दिखेगा? कैसे समझ में आएगा? हमारे मां बाप बताते हैं ना, तू बचपन में ना क्या करता था पता है, तेरी क्या आदतें थी बचपन में, अंगूठा चूसा करता था। क्या कुछ भी क्या, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं चूसा करता था। मेरी फोटो भी है, तो मैं विश्वास नहीं करता, तो फोटो दिखाई, देखो अंगूठे चूसते हुए, मैं रख लिया, दिखाना मत किसी को। तो हमारी आदतें, बचपन की आदतें और अब की आदतें, बचपन की हमारी इच्छाएं, खिलौने चाहिए, साइकिल चाहिए, खेलकूद का सामान चाहिए, मस्ती, ये सारी हमारी इच्छाएं। फिर जब बड़ा हुआ, इसलिए शंकराचार्य क्या कहते हैं श्लोक में, बालस्तावत क्रीड़ा सकता तरुणस्तावत तरुणी सकता वृद्धोतावस चिंता सकता परे ब्रह्मणी को पी न सकता। कि हर एक अवस्था में सूक्ष्म शरीर के विषय में बता रहे हैं शंकराचार्य श्लोक में, सूक्ष्म शरीर के विषय में बता रहे हैं कि बाल्य अवस्था में किससे आसक्त, क्रीड़ा से, इच्छा, वो इच्छा। और वही व्यक्ति तरुण अवस्था में फिर आसक्त तरुणी में, तरुणी तरुण में, और वृद्ध अवस्था में आसक्त चिंता। तो हम जब हमारा मनुष्य जीवन ये जो जी रहे हैं, इसमें केवल हमें चिंतित हमारे शारीरिक परिवर्तन से नहीं इतना होना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर परिवर्तित हो रहा है ये हमारे सूक्ष्म शरीर के परिवर्तन पर निर्भर है। और इसलिए भगवान जो ये कहते तथा देहांतर प्राप्तिर, तथा का अर्थ है कि जिस प्रकार से उसने अपना जीवन जिया है उसके अनुसार उसे फिर अगला स्थूल शरीर मिलेगा। कौन सा जीवन जिया है? सूक्ष्म जीवन, सूक्ष्म शरीर का जो जीवन है। तो अभी हमें ये जो इस प्रकार जिस भी प्रकार का शरीर मिला है ये हमारे पिछले सूक्ष्म शरीर के वजह से मिला है, जो हमने इच्छा की, जिस इच्छा से जो हमने कर्म किए, क्योंकि बिना इच्छा के कर्म कर ही नहीं सकता। तो जिस सूक्ष्म शरीर से हमने जो इच्छा की, फिर जो कर्म किए, उसके वजह से फिर हमें लिखा, मान लीजिए कि हम एक ऐसे परिवार में पैदा हुए, जो भी परिवार, कोई परिवार में हम पैदा हुए, हमारा कद इतना, उससे बड़ा नहीं, उससे छोटा नहीं, हमारा कॉम्प्लेक्शन क्या कलर का होगा, फिर हम कितने बीमार होंगे, कितने हम निरोगी होंगे, कितने पढ़ेंगे लिखेंगे, ये सब कुछ हमारे पिछले सूक्ष्म शरीर के अनुसार पहले से लिखा जाता है, ये सब कुछ लिखा जाता है। और वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना के फिर हमको पैदा किया जाए, सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये, हमको पैदा करने का कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आप देखिए कितने सारे हम लोग यहां बैठे, किसी का भी चेहरा एक से मिलता नहीं। अब देखिए इतना सा, जितना भी वो सर्कमफ्रेंस रहेगा हमारे चेहरे का, कितना, सबका तकरीबन इतना ही है ना, ऐसा नहीं कि कोई इतना बड़ा हो गया, कोई तकरीबन छोटा मोटा इतना ही रहता है। इतने से चेहरे में सोचिए कितने ऐसे चेहरे हर एक चेहरे में कुछ यूनिक, जो जुड़वा है उसमें भी डिफरेंस होता है। हर एक चेहरे में आंख, इधर ऐसा नहीं कि किसी को अलग करना है तो आंख इधर निकाल दी कि वो अलग होना चाहिए ना उससे, नहीं, आंख उधर ही होगी, नाक इधर ही होगा, सब कुछ उधर ही होगा। इतने से सर्कल में यदि हमको कोई बोले कि कितने पॉपुलेशन कितना है कंट्री पूरे वर्ल्ड का, 6 बिलियन, तो हमको कोई कहे कि इतने से सर्कल में 6 बिलियन वैरायटी ड्रॉ करो, 6 बिलियन वैरायटी, और उसमें लिमिटेशन कितना है कि आंख इधर ही होगी, नाक उधर ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, और वो गोली होनी चाहिए आंख, उसके अंदर आंखें सबकी अलग, नाक सबका अलग, चेहरे के एक्सप्रेशंस अलग, सब कुछ अलग। तो कल्पना कीजिए कि भौतिक प्रकृति जो भगवान ने ये भौतिक प्रकृति को कार्य दिया है कितना कॉम्प्लेक्स है, कर्मों के अनुसार उसको उस प्रकार का शरीर देना और फिर कर्मों के अनुसार वो बदलता भी रहता है इस जीवन में। ऐसा नहीं कि दे दिया तो अभी, कई ऐसे होते हैं उनकी बचपन की फोटो देखो, अभी देखो समझ में नहीं आता, यही है वही चेहरा, बदलता रहता है इसी जीवन में, फिर अगले जीवन में अलग सा चेहरा, वो जो हमने अभी वीडियो देखा उसमें। तो सूक्ष्म देह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, समझना है कि किस प्रकार से उसका परिवर्तन होता है। अब भगवान यहां पर कहते हैं मुह्यति, कि कौन व्यक्ति मोहित नहीं होता, धीर व्यक्ति, तो उनकी चर्चा हम अंत में करेंगे। इसके साथ भगवान ये कहते हैं कि जो धीर नहीं अधीर है वो मोहित हो जाता है ना। भगवान यदि ये कह रहे हैं कि धीरस्तत्र न मुह्यति, ये कहने का मतलब क्या था अर्जुन को? अर्जुन को ये इसलिए कहे तुम क्यों मोहित हो रहे, क्योंकि तुम अधीर हो। यदि कोई धीर व्यक्ति होता तुम्हारे जगह पर तो वो मोहित नहीं होता अर्जुन इन सब परिवर्तनों से, तुम मोहित हो रहे हो क्योंकि तुम धीर नहीं हो। तो मोह के प्रकार, हमारे शास्त्रों के अनुसार ये तीन मोह के प्रकार बताए गए हैं, भ्रमित होना या मूर्ख बनना। अक्सर लोग भ्रमित अवस्था में जीवन जीते हैं इसलिए मूर्ख बनते रहते हैं। ये नहीं कि कोई बहुत पढ़ लिख लिया तो बहुत बड़ा वो विद्वान हो गया, नहीं, भौतिक प्रकृति बड़े बड़े विद्वानों को मूर्ख बनाती है, ज्यादातर बड़े बड़े विद्वान ज्यादा मूर्ख बनते हैं वो लोग, किसके हाथों, भौतिक प्रकृति के हाथों। फिर उद्विग्न होना या परेशान होना, यह भी एक मोह का एक लक्षण है, मोहग्रस्त व्यक्ति का एक लक्षण है यह दूसरा। अविश्वास करना या संदेह करना, इसके हम एक एक उदाहरण लेंगे, भ्रमित होना या मूर्ख बनना। कौन कह सकता है? सीता देवी, हिरण, कौन सा हिरण था? सोने का हिरण, सोने का हिरण। और सीता देवी ये किनकी अर्धांगनी? प्रभु श्री राम, जो कि स्वयं भगवान, स्वयं भगवान की धर्म पत्नी यदि सोने के हिरण से भ्रमित हो सकती है, मूर्ख बन सकती है। हालांकि ये केवल वो उदाहरण स्थापित कर रही है हमें हमारी मूर्खता से बाहर निकालने के लिए, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सीता देवी वो हमारी तरह कोई जीव है, नहीं। तो ऐसा कोई हिरण, प्रभु श्री राम ने कहा भी सीता देवी कि ये मायावी है, ये कोई मायावी राक्षस है, ऐसा कोई हिरण हो ही नहीं सकता, मैं जानता हूं, अरे मैंने सृष्टि की है, सारे हिरणों को मैंने बनाया, मुझे पता है ऐसा कोई हिरण मैंने बनाया ही नहीं। तो फिर भी सीता देवी भ्रमित हो गई, तो यहां पर सीता देवी का उदाहरण मोह के इस विभाजन से क्या समझ में आता है कि इस भौतिक संसार में प्रकृति इसी प्रकार से सोने के हिरण प्रस्तुत करते हैं हमारे साथ। जैसे वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक कर क्या रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार, ये वैज्ञानिक मारीच के समान है, वो कर क्या रहे हैं, सोने का हिरण। और हमें लगता है, दिखता है कितना सुंदर दिख रहा है, देखो कितना कितना सुंदर ये टीवी का मॉडल कितना सुंदर है, देखो एकदम पतला पतला, कितना बड़ा बड़ा दिखता है इसमें, ये गाड़ी का मॉडल देखो, ये सेलफोन का मॉडल देखो, ये इसका देखो, उसका देखो, इसका घर देखो, जो भी कुछ, ये कपड़े देखो, ये सब वो सोने के हिरण के समान। तो पहले हम भ्रमित होते हैं, फिर मूर्ख बनते हैं, और फिर उसका प्राइस क्या है, प्रभु श्री राम छूटते हैं। कौन छुटाता है, रावण। तो ये देखिए, इससे ये समझ में आ रहा है कि सीता देवी एक इतने से क्षण के लिए भ्रमित हुई, मूर्ख बनी, उसके वजह से कीमत क्या चुकानी पड़ी, प्रभु श्री राम छूटे, प्रभु श्री राम का संग छूटा, और किसका संग मिला, रावण का। तो इसलिए हर समय हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और इस प्रसंग से हमें ये समझाया जा रहा है कि जब हम भ्रमित अवस्था में आते हैं, जैसे सीता देवी आई मूर्ख बन रही थी, ऐसा नहीं कि प्रभु श्री राम हमें कहते नहीं, कोई कह सकता अरे मैं मूर्ख बन रहा था, भगवान क्या कर रहे थे, उनका ड्यूटी है ना मुझे समझाना, तो कोई नहीं बोल सकता। सीता देवी फिर आरोप नहीं लगा सकती प्रभु श्री राम के ऊपर कि आपने मुझे मना क्यों नहीं किया उस समय, प्रभु श्री राम ने सीता देवी को मना किया कि ये मायावी है। तो वैसे ही भगवान अपने प्रतिनिधियों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा हमें बताते हैं, भगवान तो इतने कृपालु हैं कि सीता देवी वहां पर देखने के पश्चात भगवान ने बताया, हमारे लिए तो आने से पहले भगवान बता दिए, देखना भी मत उधर, वो आएगा, सारे कलयुग के लक्षण बता दिए पहले से भागवत में, अन्य पुराणों में, कि ये कलयुग के लक्षण, वो आने से पहले भगवान ने हमें चौकन्ना कर दिया। तो कोई हम ये नहीं कह सकते कि भगवान ने हमें चौकन्ना नहीं किया, प्रभु श्री राम ने चौकन्ना किया था, सावधानी भगवान ने उनको दी थी, चेतावनी दी थी। और उसके साथ साथ एक और इस प्रसंग से क्या सीखते हैं कि जब हम हट कर कि नहीं मुझे चाहिए, सीता देवी ने क्या कहा, जो भी है मुझे चाहिए, चाहे वो मायावी है, चाहे वो कोई राक्षसी, जो भी है मुझे चाहिए, तो ये जीव की दशा होती। भगवान मना करते हुए हम कहते नहीं मुझे चाहिए, इंद्रिय भोग मुझे चाहिए, चाहे वो मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में डाले, मुझे चाहिए। इसे कहते हैं प्योर अनअलॉयड इल्यूजन, शुद्ध मोह। उद्विग्न होना, परेशान होना, अर्जुन, इसमें अर्जुन का उदाहरण है कि सामने उद्विग्न होना चाहिए था अर्जुन को इनको मारने के लिए, परेशान अर्जुन को इसलिए होना चाहिए कि इस दुर्योधन ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया बुरा, परंतु अर्जुन की परेशानी देखो, मैं कैसे मारूं इसको, उल्टा। जैसे एक भक्त भी परेशान दिखते हैं और एक अभक्त भी परेशान दिखता है, अभक्त की परेशानी क्या है, कैसे मैं इंद्रिय भोग को कैसे इकट्ठा करूं, एक भक्त की परेशानी क्या, कैसे मैं इंद्रिय भोग से छुटकारा पाऊं, दोनों परेशान है। परंतु एक भगवान की भक्ति में परेशान है, जिसे परेशानी नहीं बोलेंगे, केवल समझने के लिए बोल रहे हैं, और एक है जो कि जैसे एक बार एक भागवत का श्लोक है, भक्तिर परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्र। तो एक भक्त मुझे पूछ रहे थे ये श्लोक का क्या मतलब है, भक्ति परेशानुभव, भक्ति करने से परेशानी आती है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, वो संस्कृत है, वो हिंदी नहीं है, वो हिंदी की परेशानी लगा दिया उसने, भक्ति परेशानुभव उसका अर्थ है पर ईश अनुभव कि किसका अनुभव होगा भक्ति करने से, ईश ईश्वर का, तो पर ईश अनुभव उसको उसको संस्कृत में बोला जाता है भक्ति परेशानुभव। तो वो परेशान हो गया वो श्लोक पढ़कर। तो अर्जुन जो कि उद्विग्न और परेशान हुए, अविश्वास करना और संदेह करना, फिर से सीता देवी का उदाहरण, ये कब, लक्ष्मण, कि यहां पर न केवल प्रभु श्री राम ने सीता देवी को कहा बल्कि गुरु श्री गुरु कौन है, लक्ष्मण, आदि गुरु लक्ष्मण सीता देवी को बोल रहे हैं कि वो जो आवाज सुनाई दी हे सीते हे लक्ष्मण, वो प्रभु श्री राम की आवाज थी नहीं। तो यहां पर वो संदेह करने लगी लक्ष्मण के ऊपर कि लक्ष्मण, बहुत ही कठोर बात उन्होंने लक्ष्मण से कह दी कि तुम मेरा भोग करना चाहते हो इसलिए तुम नहीं जा रहे, इसलिए तुम फायदा उठाने चाहते हो यहां पर। तो यहां पर देखिए कि जब प्रभु श्री राम की आवाज सुननी चाहिए थी तब नहीं सुना, अब नहीं सुनना है तो सुन रहे हैं। इसे कहते हैं मोह, कि जिस समय भगवान की आवाज जिस तरीके से सही मायने से वही भगवान प्रभु श्री राम पहले कह रहे थे वो समझ में नहीं आया, अब प्रभु श्री राम की आवाज वो कह रहे हैं कि ये उनकी आवाज है जबकि वो मारीच की आवाज थी। तो भगवान श्री कृष्ण जब गीता के द्वारा हमें संदेश उपदेश देते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, भगवान देखते हैं समझ में नहीं आ रहा, तो फिर भगवान मारीच के द्वारा वही आवाज, ठीक है अब मारीच तुम बोलो, तो वो हमें लगता है अब ये भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान, ऐश करो। वो भगवान माया देवी के द्वारा बुलवा रहे हैं ताकि ये धक्के खा के फिर आए मेरे पास, ठोकर खाकर आए फिर ये मेरे पास। अंततः सीता देवी फिर प्रभु श्री राम से मिली, परंतु फिर खैर हमें रामायण देने के लिए वो उनका मुख्य प्रयोजन था। अब अन्य देह की प्राप्ति, भगवान कह रहे हैं कि देह परिवर्तन, हमने उसकी चर्चा की किस प्रकार के देह परिवर्तन, अब इस जीवित अवस्था में जो परिवर्तन भगवान ने बताया उसके पश्चात भगवान बता रहे हैं कि पूरे देह को छोड़कर दूसरे देह को प्राप्त जो करता है, इसके कुछ उदाहरण हम लेना चाहेंगे। भरत महाराज, कौन कह सकता है देह परिवर्तन का ये एक उदाहरण। देखो हिरण ने बहुत तकलीफें दी हैं, सावधान रहना हिरण से। तो भरत महाराज हिरण से आसक्त हुए, हिरण बने, लेकिन इसमें मुख्य बात क्या समझ में आ रही भरत महाराज के उदाहरण से, ठीक है हम अंत में वो प्रश्न पूछेंगे, पहले एक एक उदाहरण ले लें। नलकुबर मणिग्रीव, इनका देहांतर प्राप्ति कैसे हुआ, कुबेर के पुत्र शिव के अनुचर इतने बड़े देवता वहां से बने क्या ये, अर्जुन वृक्ष वृक्ष खड़े रहे कितने हजारों करोड़ों साल खड़े रहे। राधानाथ महाराज अपने एक प्रवचन में बता रहे थे कि कल्पना कीजिए कि कोई इतना सुंदर व्यक्ति, ये लोग इतने सुंदर थे दिखने में और इनके ऐश्वर्य में, इतना सुंदर व्यक्ति वो वृक्ष बन जाए। वृक्ष की क्या सुंदरता होती है, वृक्ष बन जाए। तो बता रहे थे कि, और वो भी भारत में, बोल रहे थे भारत के जो वृक्ष होते हैं ज्यादातर वो कुत्ते किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बोल रहे थे इमेजिन नलकुवर एंड मणिग्रीव स्टैंडिंग एंड डॉग्स पासिंग बाय, नो सन्स ऑफ कुबेरा एंड डॉग्स आर पासिंग यूरिन ऑन देम, क्या कर सकते, कुछ नहीं, खड़े रहो। अदि वही चीज पहले वो बता रहे थे, वही चीज जब वो शिव के अनुचर कुबेर के पुत्र के रूप में यदि कोई करता तो वहीं पे खत्म कर देते उसे। तो नलकुवर और मणिग्रीव पेड़ बन गए, अर्जुन वृक्ष, गजेंद्र, इंद्रदुम्न राजा, महाराज इंद्रदुम्न बने क्या, हाथी। श्राप मिला अगस्त्य मुनि उनके मुख से और हाथी बने गजेंद्र। नारद मुनि एक दासी पुत्र और उससे पहले वो एक गंधर्व उपभरण उनका नाम, तो दासी पुत्र से फिर भगवान के नित्य पार्षद नारद मुनि बने। ध्रुव महाराज के पुत्र इनका नाम उत्कल, इनके विषय में बताया गया बहुत बड़े योगी थे ये पिछले जन्म में, और योग साधना पूरी इनकी नहीं हुई तो ध्रुव महाराज के पुत्र के रूप में ये पैदा हुए। महाराज नृग, इनके विषय में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में बताया गया है कि महाराज नृग बहुत दानवीर राजा, और इनके दान देने में कुछ गलती हो गई अनजाने में, और इन्हें ब्राह्मण ने श्राप दिया, छिपकली बन गई। महाराज नृग क्या बने, छिपकली। तो ये सब कुछ उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों से, किसके उदाहरण हैं, देहांतर, देह के अंतर के उदाहरण। परंतु फिर से ये प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि इसमें मुख्य बात आज के श्लोक से हम इन उदाहरणों से क्या सीख रहे हैं, आसक्ति नहीं, आज के श्लोक में भगवान आसक्ति के बारे में नहीं कह रहे, हाँ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल ये समझ रहे हैं कि भरत महाराज की आत्मा वही बताई गई है, नलक और मणिग्रीव की आत्मा वही बताई गई है, सबकी आत्मा, गजेंद्र की आत्मा वही बताई गई, शरीर बदल गया केवल। तो मुख्य सिद्धांत क्या इनसे समझ में आया इन उदाहरणों से, हाँ केवल देह बदला है, व्यक्ति वही है, व्यक्ति वही है, देह बदला है केवल, ये सिद्धांत। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, कुछ सिंपल है, इन उदाहरणों से ये समझ में आ रहा है। तो शास्त्रों के द्वारा भगवान ये सब उदाहरण दिए जो हैं, इससे ये समझा रहे हैं कि फिर हमें, हम अब जब नलकोर और मणिग्रीव का उदाहरण देखते हैं कि वो अर्जुन के वृक्ष बन गए और फिर उन दामोदर लीला में भाग लिया और भगवान ने उनका उद्धार किया, तो हमें बुरा लगता है, उनका वृक्ष बनना बुरा लगता है, नहीं, गजेंद्र का उद्धार भगवान ने किया तो हमें क्या बुरा लगता है कि वो हाथी बन गए, नहीं, क्योंकि अंततः उनको भगवान की कृपा मिली और वो वही व्यक्ति। तो इसलिए धीर पुरुष के गुण क्या है, धी का अर्थ है बुद्धि और धी का अर्थ है धैर्य। तो यदि हमें इन अवस्थाओं से प्रभावित नहीं होना है तो हमें, भगवान कहते हैं धीरस्तत्र न मोहियेति, तब जाकर, धी का अर्थ है धीर, वो व्यक्ति है जो अपनी बुद्धि से इन अवस्थाओं को देखे, समझे, साक्षात्कार करे। जैसे कि अभी हम इस श्लोक को बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि मन से अच्छा लगता है बोलने में श्लोक ना, नहीं, बुद्धि से। तो बुद्धि से हम समझें पहले इस सिद्धांत को, उदाहरणों को, और फिर प्रयोगशाला में उसको लगाकर, और फिर धैर्य, धीर का एक और अर्थ है जिसके अंदर धैर्य हो कि हां ये जो मैं प्रयोगशाला में इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया हूं, प्रयोग में लाया हूं, उसका फल मुझे भगवान अवश्य देंगे। इसे कहते हैं धीर, वो मोहित नहीं होता। तो यही आज के श्लोक से भगवान ने समझाया। तो यदि हम आज का श्लोक फिर से उसका विच्छेदन, ताकि क्योंकि कलयुग में हमारी बुद्धि इतनी ज्यादा प्रगत नहीं है, तो फिर से एक एट वन ग्लांस पूरा श्लोक, एट वन ग्लांस के आज का पूरा श्लोक भगवान ने किस प्रकार से विच्छेदित करके समझाया। तो सबसे पहले भगवान ने सिद्धांत का पुष्टिकरण किया एक उदाहरण देकर। उसके पश्चात भगवान ने बताया कि देही के देह की अवस्थाएं क्या होती है, और भगवान ये बता रहे हैं कि उन अवस्थाओं के वजह से कोई व्यक्ति मोह में गिर जाता है। वो अवस्थाएं बदलती रहती है, तो मोह में, तो मोह की आशंका, और मोह की आशंका से व्यक्ति कौन दूर हो सकता है, जो धीर पुरुष है। ये भगवान बता रहे हैं, धीरस्तत्र न मोहयति। और वो कैसे उस मोह से दूर हो पाएगा, जब वो ये जान लेगा कि मैं वही व्यक्ति रहूंगा अगले जन्म में भी। व्यक्ति मोहित क्यों हो जाता है, अरे छूट रहा है शरीर, मैं मर रहा हूं। तो ये अन्य देह की प्राप्ति के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें केवल देह अन्य मिलेगा, तुम वही रहोगे, तो मोहित मत हो। भगवान इसमें धीर कैसे बनना है वो बता रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि जो धीर है वही बनेगा, धीर कैसे बनना है वो भी बता रहे। तो इस एक श्लोक में भगवान ने इस प्रकार से विच्छेदित कर ये पूरा श्लोक हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये समझना है कि भगवद गीता यदि हमें अपने जीवन में उतारनी है तो ये बुनियाद है भगवद गीता की, ये श्लोक जो है, और इससे संबंधित आत्मा और देह से का जो विभाजन है, उसके अन्य जितने भी श्लोक हैं, वो भगवद गीता की बुनियाद है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की